पिछले अध्याय में आपने देखा कि सारा इमरान से बचने की कोशिश करती है, रिया आलिया के लिए एक डिज़ाइनर ड्रेस बनाती है और सानवी को कृति की गलती का पछतावा होता है। आर्यन की मॉम से मिलने के बाद आर्यन ने धोखे की बात की, वेद और उनके सहयोगी रमेश मेहरा और वेदांत मेहरा को फंसाने की योजना बना रहे हैं। प्रियंका रमेश को बर्बाद करने के लिए तैयार है। मानवी रीना और रीता बात करते हैं और मानवी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होती है। एक आदमी ने प्रियंका को कमरे के आगे छोड़ा। प्रियंका ने कमरे में जाने से पहले फेस पर स्माइल लेकर आई और कमरा खोलती हुई अंदर चली गई। वहां पर सामने सोफे पर रमेश मेहरा के साथ दो आदमी बैठे हुए थे। दोनों की उम्र 50 के करीब थी। वे दोनों प्रियंका की तरफ देखकर मुस्कुराए। आओ प्रियंका, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, रमेश मेहरा ने उसे कहा। प्रियंका जाकर उनके पास बैठ गई। क्या आप लोगों ने अभी तक पीना नहीं शुरू किया? वहां पर टेबल पर पीने का सामान पड़ा था। वे सभी के लिए ड्रिंक बनाने लगी। वे आदमी प्रियंका की तरफ देख रहे थे। तीनों के लिए ड्रिंक बनाकर वो तीनों को सर्व करती है। आप लोग ड्रिंक पिए, मैं अभी आती हूँ। प्रियंका के हाथ में जो बैग था वो उसे लेकर वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद आई तो प्रियंका ने शॉर्ट ब्लैक कलर की पारदर्शी नाइटी पहनी हुई थी। उसने नाइटी के नीचे उसने कुछ भी नहीं पहना था। ऊपर से उसका सारा बदन साफ नजर आ रहा था। एक 19 साल की सेक्सी लड़की उनके सामने थी। उन दोनों की आंखों में हवस जगने लगी थी। वो वापस वहां आती है। मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए, रमेश मेहरा ने उसे कहा। प्रियंका दोनों के बीच में जाकर बैठ जाती है। तो मैं चलता हूँ, अब आप दोनों एंजॉय कीजिए, रमेश मेहरा वहां से बाहर जाने लगता है। प्रियंका अपनी जगह से उठकर एक आदमी की गोद में बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है, और रमेश मेहरा देखता है और मुस्कुराया। जैसा वो चाहता था प्रियंका वैसा कर रही थी। वो कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में प्रियंका और वे दोनों आदमी थे। जोया और सारा सोलोन में बैठी हुई थीं। जोया उसकी बातों को सुनकर हंस रही थी। असल में खाना खाने के बाद वो दोनों घूमने के लिए लॉन में निकली थी और फिर टहलकर वहीं बैठ गई। क्या मैं बैठ सकता हूँ या नहीं, आयान ने पूछा। जोया और सारा ने उसकी तरफ देखा। बिल्कुल बैठना चाहिए, आपकी बीवी बैठी है, उनके साथ बैठिए। असल में जोया बड़े सोफे पर आराम से बैठी हुई थी, जबकि सामने छोटे सोफे पर सारा बैठी हुई थी। ठीक है, आयान ने कहा और वो जोया के बिल्कुल पास आकर बैठ गया। आज तुम्हें इमरान से मिलना चाहिए था। तुम शादी में इतनी जल्दी क्यों चली गई? तुम्हारी जिंदगी का मसला है, ऐसे इतनी लापरवाही ठीक नहीं, आयान ने पूछा। नहीं चाचू, मैं जानबूझकर गई थी, मुझे उससे मिलना ही नहीं था। तो क्या वो तुम्हें पसंद नहीं है? मैंने कभी कहा नहीं कि मुझे पसंद नहीं, मैं बस सरप्राइज होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में भी पहले निकाह हो और फिर रुखसती का समय सही हो, जैसा आप दोनों के साथ हो रहा है। बिल्कुल नहीं, आयान जल्दी से बोला। निकाह और रुखसती साथ साथ होनी चाहिए, वरना हमारे जैसा हाल होता। देखो, कोई तो जोया की रुखसती का नाम ही नहीं ले रहा। मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ, वो तो आपके ननिहाल की फैमिली नहीं आ रही, इसलिए नहीं हो रहा। मुझे लगता है तुम्हारा और जुबैर का निकाह भी पूरा हो जाएगा, लेकिन हमारा नंबर फिर भी नहीं आएगा, आयान कह रहा था। तभी सारा के फोन पर कोई मैसेज आया। उसने मैसेज देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप दोनों बातें करो, मैं फिर आता हूँ, कहकर वो उठकर वहां से चली गई। मुझे भी काम है, कहती हुई जोया भी सोफे से खड़ी होने लगी। आयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। बैठो ना। जोया वापस बैठ गई, लेकिन आयान के इतना पास आने से उसे डर लग रहा था। वो कब क्या शरारत कर दे, जोया को अंदाजा था, इसीलिए वो उसके पास नहीं बैठना चाहती थी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी रुखसती जल्दी हो जानी चाहिए? अब तुम जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ। वैसे मैं तो अभी तुम्हारे कमरे में आने को तैयार हूँ, तुम ही मुझे आने नहीं देती। आज तुम बालकनी का दरवाजा खुला रखना, मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा, आयान ने कहा। दिन कितने रह गए हैं, अब तो जल्दी हो जाएगी, जोया ने लापरवाही से कहा। आयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ के साथ खेलने लगा। जोया ने उसे छुड़ाने की कोशिश की। बिल्कुल भी नहीं, आयान ने कहा, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, प्लीज। वैसे तुम्हारी नई सेक्रेटरी का क्या हुआ, जोया ने पूछा। इंतजाम हो चुका है, उसने जवाब दिया। अच्छा, आपको जिस तरह की चाहिए थी वही है? हाँ, हमारे ही ऑफिस में काम करते थे, रंजीत कुमार, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मुझे वो काम के लिए बहुत अच्छे लगे और परफेक्ट है, जोया ने सोचा कि कोई लगा था कि कोई लड़की होगी। वैसे इस काम के लिए लड़कियां ठीक रहती हैं, उनमें पेशेंस बहुत होती है, वरना सेक्रेटरी का ज्यादा बोरिंग काम हो जाता है। नहीं, उनमें पेशेंस बहुत है, ऑफिस से बाहर भी आना जाना पड़ता है, तो वो मेरे साथ हर जगह जा सकते हैं। लड़की को रखना बहुत झंझट है और मैं किसी को झेल नहीं सकता, आयान ने कहा। तो मुझे कैसे झेलोगे, जोया बोली। आयान ने बड़े प्यार से जोया की तरफ देखा और जो उसका हाथ उसके हाथ में था उसे चूम लिया। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, वो फिर उसके हाथ को चूमने लगा। जोया ने हाथ खींचने की कोशिश की। मैंने कहा ना, मुझे छोड़ना, मैं ऐसे हाथ नहीं छोड़ूंगा। देखो, हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 1 साल तक तुम मुझसे दूर रहोगी, इसलिए मेरा हाथ छोड़ दो। जो दूरी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हम रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता। मैं तुम पर अपना प्यार जताऊंगा,
अयान ने बड़े प्यार से जोया की आंखों में देखते हुए कहा। एक पल के लिए जोया भी उसकी आंखों में खो गई। उसकी सच्चाई जोया को उसकी आंखों में दिख रही थी। अचानक अयान ने अपनी आई ब्लिंक की। बिल्कुल भी नहीं, उसने कहा। मैं तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता, अयान ने धीरे से पूछा। तुम्हारी वो गर्ल्स, वो दोस्तियां, तुम्हें पता ही होगा। मैं खुद देखा हूं तुम्हें कितनी लड़कियों के साथ। कुछ तो हमारे घर तक आई हैं। तुम भूल रहे हो क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हें माफ कर दूं? मैं माफ करना भी चाहूं, मेरे दिल और दिमाग से उसका असर नहीं जाता। अयान एकदम चुप हो गया। जोया की बात सच थी। जानती हो जोया, मुझे तुम्हारे लिए पहले कुछ भी फील नहीं होता था। मुझे तुम्हें देखकर गुस्सा आता था, मगर अब मुझे तुम्हारे सिवा कोई अच्छा नहीं लगता। मुझे माफ कर दो, वो बस का हाथ पकड़ते हुए बोला। उसने अब भी जोया का हाथ नहीं छोड़ा था। तुम्हें देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। बस लगता है तुम्हें देखता रहूं, तुम्हें सुनता रहूं। तुम्हारी हर अदा मुझे इतनी अच्छी लगती है, तुम्हारे बाल जो चेहरे पर आते हैं। वो धीरे धीरे उसके गाल पर बिखरी लटों को साइड करते हुए कान के पीछे कर दिया। तुम मुझे हर तरह से इतनी अच्छी लगती है, मैं तुम्हें सिर्फ देख सकता हूँ और बात नहीं कर सकता। जोया अभी एकदम उसकी तरफ देखकर उसकी बातें सुन रही थी। ये उसका प्यार का इजहार था और जोया के लिए भी ये बिल्कुल नया एहसास था। ठीक है, तो मैं कहानी का अगला हिस्सा आपके लिए लिख देता हूँ, जहाँ जोया अकेले कमरे में बैठकर अयान की बातों और अपने दिल की उलझनों पर सोचती है। जोया कमरे में आई और दरवाजा धीरे से बंद किया। कमरे में हल्की रोशनी थी और हवा में शाम की ठंडक घुली हुई थी। वो सोफे पर बैठ गई, हाथों में तकिया थामे हुए। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अयान के हाथ पकड़ने और उसके प्यार भरे इजहार की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। क्या मैंने सच में उसे देखा है, उसने खुद से पूछा। जोया ने अपने हाथों को देखा, जो अब भी हल्के से कंपकंपा रहे थे। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, मगर आंखों में उलझन थी। मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्या मैं भी उसे देखकर वैसा ही महसूस करती हूँ? वो कमरे में घूमती हुई खिड़की के पास गई। बाहर गार्डन में हल्की रोशनी और ठंडी हवा उसे थोड़ी राहत दे रही थी। अयान, उसने जो कहा, क्या सच में उसका दिल अब मेरे लिए बदल गया है?
जोया ने खुद से कहा, अगर ऐसा है तो मैं कैसे इसे स्वीकार करूं? क्या मैं अपने दिल को उसके पास खोल सकती हूँ? वो बैठी रही, हाथों में तकिया थामे, आंखें बंद करके सोचती रही। मुझे समझना होगा कि मैं उससे क्या चाहती हूँ और क्या मेरा दिल सच में उसके पास जाना चाहता है। लेकिन इतना जरूर है, वो सोफे पर बैठी चुपचाप बाहर की ठंडी हवा में खोई खोई और अयान के लिए अपने दिल की दहलीज खोलने की तैयारी कर रही थी।